अमर धीमे कदमों से चलकर अंदर समर्थ के पास गया। वो उसके पास बैठकर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, समर्थ, मुझे पता है इतनी जल्दी तुम उस लड़की को भूल तो नहीं पाओगे, पर फिर भी तुम्हें सलाह देता हूँ कि जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है और उसे हमें सबसे ज्यादा अपने लिए जीना चाहिए, किसी भी दूसरे इंसान के लिए नहीं। उम्मीद करता हूँ तुम बहुत जल्दी खुद को संभाल लोगे, मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है। इतना बोलकर उसने झुकते हुए प्यार से समर्थ के माथे को चूम लिया और फिर कमरे से निकलकर बाहर आ गया। वो बाहर आया तब तक विश्वास रावत भी वापस जा चुका था। कल्याण सिंह और रजत आपस में ही बातें कर रहे थे। अमर ने एक नज़र पूरे हॉल में देखा और फिर धीमे कदमों से किचन में गया तो देखा जानवी भी अपने आटे से सने हाथों से अपने बाल साइड में करने की कोशिश कर रही थी, जो बार बार उसकी आंखों के सामने आकर उसे परेशान कर रहे थे। अमर धीमे कदमों से चलकर जानवी के पीछे गया और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपना चेहरा उसके कंधे पर रख लिया। जानवी ने एकदम से चिहूकते हुए अपनी गर्दन घुमाकर अमर की तरफ देखा। अमर भी अपनी पागलपन वाली नज़रों से उसे ही देख रहा था। अमर ने हल्की सी स्माइल के साथ अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर जानवी के बालों को उसके कान के पीछे किया और फिर उसके गाल को चूमते हुए बोला, बच्चा, अगर तुम्हें परेशानी हो रही है खाना बनाने में तो हम कुक रख लेते हैं। जानवी, जो अमर के टच को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसने अमर की ये बात सुनकर जल्दी से उसकी आंखों में देखते हुए नामे गर्दन हिला दी और फिर उसका हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं अमर, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। अमर ने जानवी की गर्दन को धीरे से किस करते हुए कहा, ठीक है, जब तक तुम खाना बनाओगी मैं भी तुम्हारे पास ही रहूंगा। जानवी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं प्लीज, किचन में कोई आ जाएगा, आप बाहर दादाजी और पापा जी के पास। उसकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही अमर ने उसकी कमर को अपनी मुट्ठी में भरते हुए हल्के गुस्से में कहा, जान, मुझे इस बात पर कोई डिबेट नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं यहीं रहने वाला हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी है, मुझे बस तुम्हारे पास रहना है। इतना बोलकर अमर ने अपनी आंखें बंद कर ली और जानवी की उस सोंधी सी खुशबू को अपने जहन में उतरने लगा जैसे उसके लिए वो कोई ड्रग्स हो। जानवी की पूरी बॉडी बुरी तरह सिहर उठी थी, पर वो अमर को पलटकर कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। वो अपने निचले होठ को चबाते हुए मन ही मन बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अमर को कोई जरूरी काम आ जाए और वो किचन से बाहर चला जाए। पर अफसोस, इस बार भगवान भी शायद अमर की साइड थे। अगले आधे घंटे तक अमर बिल्कुल किसी चुंबक की तरह जानवी से चिपके हुए था। वहीं दूसरी तरफ दीक्षांत जब डॉक्टर को बाहर छोड़कर अंदर आ रहा था तो उसकी नज़र गार्डन में गई, जहां माही गार्डन की धूप पर बैठी थी और अपना एक पांव पकड़ रखा था। उसकी आंखें दर्द के कारण बंद थीं, जिनसे आंसू बह रहे थे। ये देखकर दीक्षांत की आंखें छोटी हो गईं। वो तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास गया और अगले ही पल झट से उसके सामने बैठते हुए हल्के गुस्से में बोला, मिस माही, यहां तुम गार्डनिंग करने आई हो या फिर ऐसे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने के लिए? दीक्षांत को यही लग रहा था कि जरूर माही इसीलिए रो रही है क्योंकि दीक्षांत उस घर पर भी काम करवा रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। माही के पैर पर चोट लगी हुई थी। उसने अपनी आंखें खोलकर दीक्षांत के चेहरे को देखा और फिर दर्द से होंठ भींचते हुए एक हल्की सी सिसकी भरी और अगले ही पल एक हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सर, पर मैं अब गार्डनिंग नहीं कर पाऊंगी। मेरे पैर पर वो बड़ी वाली कैंची गिर गई जिससे मैं पौधों की कटाई कर रही थी। मुझे लगा मैं इससे एक अच्छी डिजाइन दे दूंगी, पर वो इतनी हैवी होगी ये मुझे अंदाजा नहीं था। मेरी चोट जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं आपका सारा काम कर दूंगी और मैं अपनी किस्मत पर नहीं रो रही हूँ, अब जैसा है वैसा ही रहेगा, मैं इसे बदल नहीं सकती हूँ और रोने से तो ये बिल्कुल सही नहीं होगी। माही के बात सुनकर दीक्षांत की नज़र उसके पैर पर गई, जिसे माही ने अपने एक हाथ से कवर कर रखा था। उसने जल्दी से माही का वो हाथ उसके पैर से हटाया और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि माही के पैरों की उंगलियों के पास वाली जगह बुरी तरह छिली हुई थी। वहां से अंदर की स्किन बाहर निकली हुई थी और खून बह रहा था। अपनी चोट को देखकर माही को ज्यादा रोना आ रहा था, इसलिए उसने जल्दी से अपना हाथ वापस वहां रखते हुए कहा, सर, मैं जब इस चोट को देखती हूँ तो मुझे ज्यादा दर्द होता है, पता नहीं ये मेरा वहम है या कुछ और, पर मुझे नहीं देखना है अपनी चोट को। दीक्षांत ने गुस्से में अपने जबड़े कसते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें इतना बेरहम लगता हूँ कि इतनी बुरी चोट लगने के बाद भी मैं तुम्हें इसीलिए डांटूंगा कि तुम गार्डनिंग नहीं कर रही हो? सीरियसली, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, इतना जालिम भी नहीं हो। इतना बोलते हुए दीक्षांत उठा और अपनी शर्ट की बाजुओं को कोहनी तक फोल्ड करने लगा। माही हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी कि क्या वो उसकी हेल्प करना चाहता था। ये यकीन कर पाना अब भी माही के लिए बहुत मुश्किल था। अगले ही पल दीक्षांत ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। माही ने गिरने के डर से अपने दोनों हाथ दीक्षांत के कंधे पर कस लिए और अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था सर, पर ये इतनी भी ज्यादा चोट नहीं लगी है कि मैं इसके लिए आपसे हेल्प मांगू। दीक्षांत ने अपने कदम रावत मेंशन की तरफ बढ़ाए और फिर गुस्से में बोला, तो क्या दोनों पैर कटने के बाद तुम मुझसे हेल्प मांगने वाली थी? माही ने डर से सहमते हुए बस नामे गर्दन हिलाई। दीक्षांत ने एक नजर उसके छोटे से चेहरे को देखा, जो रोने के कारण लाल हो चुका था। उसकी आंखों के किनारे भी हल्के सूझे हुए थे। दीक्षांत ने अपने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं कितनी देर से बैठकर रो रही है, इडियट।